पृष्ठ संख्या 93। नागार्जुन का एक निबंध है विष कीट। उसमें उन्होंने लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा भारतीय काव्य की समीक्षा में नौ रस माने गए हैं, परंतु अपने कटुतिक्त चरपरी रचना के सिलसिले में मुझे एक और ही रस की अनुभूति होने लगी है। यह है विक्षोभ रस। इन्वर्टेड कॉमा बंद। नागार्जुन ने उसी निबंध में यह भी लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा बहुजन समाज की व्यापक विपन्नता से यदि आपका प्रत्यक्ष परिचय है, तब आपको विक्षोभ रस का अनुभव होगा। दरिद्रता, अज्ञान, गुलामी, रूढ़िग्रस्तता, रोग, विषमता, इनके प्रति हमारे मन में चरम घृणा का अनुभव नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ी प्रवंचना के शिकार होंगे। गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 10-5 लाख की नहीं है, यह तो हमारी संपूर्ण जनसंख्या की आधे से ऊपर चली गई। ऐसी स्थिति में यदि मेरी चेतना विक्षुब्ध भावभूमि पर विराजमान हो गई तो अस्वाभाविक नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। नागार्जुन यह भी मानते हैं कि वह विक्षोभ रस के अकेले कवि नहीं हैं। उनके अनुसार इन्वर्टेड कॉमा प्रत्येक कवि अपने अपने ढंग से प्रतिकूल भावनाओं के प्रति विक्षुब्ध होता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। आप विचार कीजिए कि निरीह और निरपराध क्रौंच के वध को देखकर आदि कवि वाल्मीकि विक्षुब्ध हुए थे या नहीं। उनके मुख से तत्काल जो श्लोक प्रस्फुटित हुआ, उसमें विक्षोभ रस की संभावना है या नहीं। हिंदी में सराहपात, कबीरदास, तुलसीदास और निराला की बहुत सारी कविताओं में विक्षोभ रस की व्यंजना है। अंग्रेजी राज के दौरान हिंदी की जिन कविताओं पर पाबंदी लगाई गई थी, उनमें से अधिकांश में अंग्रेजी राज द्वारा भारतीय जनता के भीषण शोषण और दमन के विरुद्ध विक्षोभ की अभिव्यक्ति है। नागार्जुन जिसे विक्षोभ रस कहते हैं, उसके मूल में तीन भावों का योग होता है। ये भाव हैं करुणा, क्रोध और घृणा। इन तीनों का स्वभाव प्रायः सामाजिक होता है। एक स्थिति में ये तीनों एक साथ क्रियाशील हो सकते हैं। अपने देश या समाज की साधारण जनता की भीषण गरीबी के प्रत्यक्ष बोध से जो विक्षोभ पैदा होगा, उसमें गरीबों के प्रति करुणा होगी, गरीबी से घृणा होगी और गरीबी के कारणों के प्रति क्रोध होगा। ये तीनों भाव मनुष्य को कर्मशील बनाते हैं, विक्षोभ के कारण को मिटाने के लिए क्रियाशीलता की प्रेरणा देते हैं। इसलिए यह भाव परिवर्तनकारी भी है, जो कवि पृष्ठ संख्या 94 या लेखक समाज में फैले अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण और भेदभाव का विरोधी होगा। उसका क्षुब्ध होना स्वाभाविक है और उसके विक्षोभ की अभिव्यक्ति उसकी रचनाओं में अवश्य होगी। नागार्जुन ने मैथिली में एक कविता लिखी है, हम छी क्षुब्ध, मैं क्षुब्ध हूँ। इस कविता में उन्होंने अपने विक्षोभ के मुद्दों का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने कविता के अंत में लिखा है, सबके भीतर आज स्पंदित विश्व मानो हेतु शिव संकल्प, किंतु कृत्रिम एकता के लिए प्रयासी शासकों पर देश को आ रहा गुस्सा, हम हैं क्षुब्ध। कर रहा अंतःकरण विद्रोह, लोकवाणी की यह अवहेलना है शत्रु लोकोदय का। प्राण भले ही जाए पर नहीं स्वीकार जिह्वा अस्तंभन। प्रेमचंद की तरह नागार्जुन भी सामाजिक जीवन से घृणा का स्थान और महत्व जानते हैं। उनकी कविता है, प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। कविता का आरंभ यह है, नफरत की अपनी भट्टी में तुम्हें गलाने की कोशिश ही मेरे अंदर बार बार ताकत भरती है। प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। अपने ऋषि का वियतकंग के तरुण गुरिल्ले जो करते थे, मेरी प्रिया वही करती है। नव दुर्वासा शबर पुत्र मैं, शबर पिता मह, सभी रसों को गला गला कर अभिनव द्रव तैयार करूंगा, महासिद्ध मैं नागार्जुन। नागार्जुन के अनुसार विक्षोभ की अभिव्यक्ति जिस कविता में होती है, उसमें जब आवेग धर्मिता, असहनीयता और दृष्टि की तीव्रता रची बसी होती है, तब कविता में प्रभावशीलता आती है और सुंदरता भी। नागार्जुन की कविता में पहली बार विक्षोभ तब व्यक्त हुआ जब 1948 में गांधी की हत्या हुई। उस हत्या के परिणाम स्वरूप नागार्जुन पहले स्तब्ध फिर अवसन्न और बाद में विक्षुब्ध हुए। शोभाकांत ने नागार्जुन रचनावली के पहले खंड की भूमिका में लिखा है, पृष्ठ संख्या 95 इन्वर्टेड कामा, हत्या के 10 दिनों के भीतर ही नागार्जुन की चार क्षोभ व्यंजक कविताएं शपथ, तर्पण, गोडसे और क्षमा मत करना, जनशक्ति दैनिक पटना में शोणित तर्पण नामक मुख्य शीर्षक के अंतर्गत छपती रहीं। उल्लेखनीय है कि बिहार के तत्कालीन प्रशासन ने उन रचनाओं को वर्जित रचना की सूची में डालकर कवि और अखबार पर कानूनी कार्रवाई की और उन्हें प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फलस्वरूप नागार्जुन को स्वतंत्र भारत में पहली बार जेल जाना पड़ा। लेकिन उसी वर्ष उन चारों कविताओं की एक बुकलेट भी छपी, नाम था शपथ इन्वर्टेड कॉमा बंद, जिस सरकार समाज और व्यक्ति को कवि और कविता से केवल अमृत की चाहत होती है, उसे केवल वैष्णवी साँचे में ढली कविता पसंद आती है, वह सभी दो टूक और बेलाग भाषा में कहे गए सच को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए नागार्जुन को आजाद भारत में जन भावना के सच को दुविधा रहित अंदाज और चोट करने वाली भाषा में कहने के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। नागार्जुन की एक कविता है, मैं कैसे अमृत बरसाऊं। इस कविता में उन्होंने अपने कवि मन के संकट और बनावट के बारे में लिखा है। कहो कि कैसे झूठ बोलना सीखूं और सिख लाऊं, कहो कि अच्छा ही अच्छा सब कुछ कैसे दिख लाऊं, कहो कि कैसे सर कंडे से स्वर्ण किरण लिख लाऊं, तुम ही बताओ मित कि मैं से कैसे अमृत बरसाऊं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कविता के प्रयोजनों को भी पाठक के सामने रखा। पंडित की मैं पूछ आजकल कवित कुठार कहाऊं, जालिम जोंकों की जमात पर कसकस लात जमाऊं, चिंतक चतुर चाचा लोगों को जा जा निकट चिढ़ाऊं, तुम ही बताओ मित कि मैं कैसे अमृत बरसाऊं। नागार्जुन के काव्य संसार में विक्षोभ की अभिव्यक्ति के अनेक प्रसंग हैं, अनेक रूप हैं और भंगिमाएं भी हैं। यहाँ उन सब के बारे में बात करना संभव नहीं है, केवल कुछ कविताओं में व्यक्त कुछ प्रसंगों और रूपों की बात करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि नागार्जुन की कविता के पाठक अपनी रुचि और समझ के अनुसार अन्य अनेक प्रसंगों और रूपों की खोज और पहचान करेंगे। नागार्जुन सबसे अधिक विक्षुब्ध तब होते हैं जब वह किसी व्यक्ति को प्राणहारी गरीबी में जीते हुए भूख से मृत्यु का शिकार होते देखते हैं। इसे वह भारत की आज़ादी के आंदोलन का अपमान मानते हैं और देश के वर्तमान शासक वर्ग को झूठ और पृष्ठ संख्या 96 लूट की राजनीति का नतीजा समझते हैं। इसीलिए उन्होंने स्वदेशी शासक नामक कविता में लिखा था, घर बाहर भर गया तुम्हारा, रत्ती भर भी हुआ नहीं उपकार हमारा, व्यर्थ हुई साधना, त्याग कुछ काम न आया, कुछ ही लोगों ने स्वतंत्रता का फल पाया, इसीलिए क्या लाठी गोली के प्रहार हमने थे झेले, इसीलिए क्या डंडा बेड़ी डलवाई हाथों पैरों में, इसीलिए क्या जेलों में जिंदगी बिताई, इसीलिए क्या खून बहाया, इसीलिए क्या मारे मारे फिरे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रात दिन, इसीलिए क्या काले पानी में जा जाकर मरे पचे हम, इसीलिए क्या फांसी के तख्ते पर झूले। अंग्रेजी राज के समय में अकाल और भुखमरी से करोड़ों लोगों की मौत का सच और उसका कारण नागार्जुन की समझ में आता है, लेकिन आज़ाद भारत में लोगों का भूख से मरना उनको भारतीय गणतंत्र पर धब्बा लगता है, इसीलिए उनके मन में विक्षोभ पैदा होता है। ऐसे ही विक्षोभ से उपजी एक कविता है, प्रेत का बयान। नागार्जुन यह जानते हैं कि वर्तमान भारत का आम आदमी जिस सत्ता और व्यवस्था के अंतर्गत जी रहा है और मर रहा है, उसमें आम आदमी की जिंदगी के सच को सुनने, सहने और उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए सच बोलना न संभव है न सार्थक। नागार्जुन की एक कविता है, वह तो था बीमार, जिसमें भुखमरी के झूठे सच की विडंबना व्यक्त हुई है। मरो भूख से फौरन आ धमकेगा थानेदार, लिखवा लेगा घर वालों से, वह तो था बीमार, अगर भूख की बातों से तुम कर न सके इनकार, फिर तो खाएंगे घर वाले हाकिम की फटकार, ले भागे की जीप लाश को सात समुंदर पार, अंग अंग की चीर फाड़ होगी फिर बारंबार, मरी भूख को मारेंगे फिर सर्जन के औजार, जो चाहेगी लिखवा लेगी डॉक्टर से सरकार। नागार्जुन का विक्षोभ तब उग्र रूप धारण करता है जब वह जन आंदोलन का सरकार द्वारा निर्मम दमन देखते हैं। 1955 में बिहार में एक बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था, जिसमें पुलिस की गोली से कई छात्र मारे गए थे। छात्रों की मौत के बाद हुआ है। पृष्ठ संख्या 97। आंदोलन पूरे बिहार में फैलकर जन आंदोलन बन गया। उस समय नागार्जुन ने छात्रों के आंदोलन के दमन और उसकी हत्या से विक्षुब्ध होकर कई कविताएं लिखीं, जो एक बुकलेट के रूप में खून और शोले नाम से छपी। जो व्यक्ति उन कविताओं को पढ़ेगा, उसे नागार्जुन के विक्षोभ का उग्र रूप दिखाई पड़ेगा। उस बुकलेट की एक कविता, ऐसा क्या अब फिर होगा, का यह अंश पढ़िए और नागार्जुन के दुख और विक्षोभ पर विचार कीजिए। ग्रामवासिनी, नगरवासिनी, माताओं, बहनों, बहुओं की रुकी निगाहें, झुकी निगाहें, क्रुद्ध निगाहें, क्षुब्ध निगाहें, अरुण निगाहें, करुण निगाहें, डरी निगाहें, भरी निगाहें, तरल निगाहें, सजल निगाहें, स्तब्ध निगाहें, शून्य निगाहें, देख रही BN कॉलेज के बरामदे पर सूखा शोणित पंख, प्रभावहीन इन चेहरों पर छा रहा स्याह आतंक, समझ न पाती किसने थोपा मानवता पर ऐसा अमिट कलंक। भीगी भीगी सहमी सहमी दहशत भरी निगाहों से ये दृश्य भला मैं भूल सकूंगा। नागार्जुन ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलने वाले संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भाग लिया था और उसके दमन को देखा तथा स्वयं झेला था। उस आंदोलन के दमन के दौरान एक बर्बल लाठीचार्ज के शिकार जयप्रकाश नारायण भी हुए थे। उस प्रसंग पर नागार्जुन की एक कविता यह है, जयप्रकाश पर पड़ी लाठियां लोकतंत्र की। कविता का आरंभिक अंश यह है, एक और गांधी की हत्या होगी अब क्या, बर्बरता के भोग चढ़ेगा योगी अब क्या, पोल खुल गई शासक दल के महामंत्र की, जयप्रकाश पर पड़ी लाठियां लोकतंत्र की। नागार्जुन का विक्षोभ असीम तब होता है जब वह दलितों और स्त्रियों पर किसी तरह का अत्याचार देखते हैं। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं रोज रोज घटती ही रहती हैं। एक भीषण घटना बिहार के बेलछी गांव में हुई थी, जिसमें 13 दलितों को जिंदा जला दिया गया था। उस घटना से नागार्जुन के मन में जो अथाह विक्षोभ पैदा, पृष्ठ संख्या 98, हुआ, उसी से उपजी हरिजन गाथा नाम की लंबी कविता। उस घटना के प्रभाव का एक चित्र यह है, यह पैशाचिक नरमेध पैदा कर गया है दहशत, जन जन के मन में इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई है, तब से बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान, दिखते हैं दृगों के कोर ही कोर, देती है जब जब पहरा पपोटों पर सील मुहर सूखी कीचड़ की। नागार्जुन का विक्षोभ जब शांत होता है, तब वह सजग और सचेत होकर कविता के सधे स्वर में भविष्य की संभावनाओं की खोज करते हैं। हरिजन गाथा कविता में दलितों की भावी मुक्ति की चिंता और चेतना इस प्रक्रिया में व्यक्त हुई है। इस कविता में गरीब दास के रूप में स्वयं नागार्जुन हैं। वह नवजात शिशु के रूप में दलितों की मुक्ति की संभावना को देखकर कहते हैं, दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वह, अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। भारत के शासकों और प्रशासकों का जो दोहरा चरित्र है, वह सामाजिक संवेदना वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेचैन और विक्षुब्ध करने वाला है। इस देश के शासकों और प्रशासकों के छल छदम, धोखाधड़ी और लूट खसोट से भरे व्यवहार का साक्षी पूरा भारतीय समाज होगा। हमारे शासकों और प्रशासकों की मानसिक बनावट में सामंती प्रवृत्ति और पूंजीवादी मनोवृत्ति का अद्भुत मेल है, इसलिए लूट और दमन उनके आचरण के अंग बन गए। नागार्जुन इस देश के शासकों और प्रशासकों के व्यवहार और आचरण की इस सभ्यता से खूब परिचित थे, इसीलिए अत्यंत विक्षुब्ध भी थे। उन्होंने अनेक कविताओं में इस देश के शासकों प्रशासकों के वादों, इरादों और व्यवहारों की असलियत का चित्रण किया है। उनकी एक कविता है स्वदेशी शासक। इस कविता को पढ़ते हुए आपको मालूम होगा कि नागार्जुन स्वदेशी शासकों के आचरण की सभ्यता की प्रत्येक विशेषता को कितनी बारीकी से देखते और पहचानते हैं। कविता का आरंभ इस तरह होता है, बात बनाओ, करो बहाने, गप्पे मारो। पृष्ठ संख्या 99। लो जम्भाइयाँ, ताजा ताजा माल उड़ाओ। चांदी का मुँह कंचन की है जीव तुम्हारी, चरण तुम्हारे गगन बिहारी। राजाओं के राजा हो तुम, हीरा मोती मणि माणिक का भस्म तुम्हारी शक्ति बढ़ाता। चाटुकार है आसमान पर तुम्हें चढ़ाता, जा जाकर दिल्ली लंदन बुर्जुआ शिष्टता सीख सीख कर, अपनी सामंती संस्कृति में पश्चिम के विज्ञानवाद की छोंक मारकर वायुयान से वापस आओ। हमें सीख दो शांति और संयत जीवन की, अपने खातिर करो जुगाड़ अपरिमिति धन की। नागार्जुन का यह विक्षोभ जब चरम स्थिति में पहुंचता है, तब वह भावाबेग में ऐसी पंक्तियां लिखते हैं, बताऊं कैसे लगते हैं दरिद्र देश के धनिक, कोढ़ी कुढ़ब तन पर मणिमय आभूषण ... बताऊं कैसी लगती है पंचवर्षीय योजना, हिडिंबा की हिचकी सुरसा की जम्हाई। जब तक हमारे समाज में अन्याय अत्याचार झूठ लूट और दमन को देखकर विक्षुब्ध होने वाले व्यक्ति हैं, तब तक समाज में मनुष्यता सुरक्षित है। और जब तक विक्षोभ की कविता लिखने वाले कवि समाज में मौजूद हैं, तब तक कविता की सामाजिकता भी सुरक्षित है।